नमस्कार भारत, 23 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। संसद में तीसरे दिन भी हंगामे के आसार, कांग्रेस सुषमा वसुंधरा और शिवराज के इस्तीफे पर अड़ी।
उनको अपनी पार्टी के उन सब लोगों की जो घोटालों के अंदर जिनका पर्दाफाश हुआ है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के शोर के बीच विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सांप और चंदन के बहाने गरमाई बिहार की सियासत।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत की
भाजपा। श्रीलंका में 3 टेस्ट मैच खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का आज होगा चयन। समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में आगे भी गतिरोध कायम रहने के आसार बने हुए हैं। कांग्रेस ललित मोदी प्रकरण को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफा देने तक की किसी भी चर्चा से इनकार किया है। दूसरी ओर दोनों के इस्तीफे की मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। ग्रीस की संसद में आर्थिक सुधार पर चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ग्रीस को देने वाली आर्थिक मदद 900 मिलियन यूरो यानी करीब 62 अरब रुपए तक बढ़ा दी है। एक सप्ताह में ग्रीस को मिलने वाली यह दूसरी आर्थिक मदद है। यह मदद इसलिए दी गई है कि जब तक ग्रीस को मिलने वाला अंतिम आर्थिक पैकेज जो कि 86 अरब यूरो का होगा उस पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक उसके बैंक काम करते रहें। वहीं प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने अपनी पार्टी सिरीजा में मौजूद विरोधियों से अपील की है कि वो उनके सुझावों का समर्थन करें। अमेरिका के टेक्सास शहर में एक काली महिला सैंड्रा ब्लैंड की मौत की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया है कि उसने सैंड्रा की गिरफ्तारी का जो वीडियो जारी किया है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। पुलिस की कार की डैशबोर्ड पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग के अनुसार सैंड्रा ने लेन बदलते वक्त इंडिकेटर नहीं दिया और एक गोरे पुलिस वाले ने उसे रोका, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी होने लगी और दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद सैंड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने फांसी लगाई है। वहीं उसके परिवार ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। सैंड्रा की मां जेनीवा रीडवील ने उसको श्रद्धांजलि देते हुए कहा, वो मेरे लिए अपराधी नहीं थी और ना ही कोई संदिग्ध, वो मेरी बच्ची थी। और आप लोग जरा सोचिए, जब आप उसकी उम्र के थे तब आप भी वही किया करते होंगे जो वो करती थी। इसलिए खबरों में जो कुछ भी है उसमें से कुछ सच है और कुछ नहीं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि जो कुछ भी आखिरकार हुआ वो दुनिया को बदल देगा। सैंड्रा ब्लैंड की मां जेनीवा रीडवील के शब्द। अमरीका में इससे पहले कई लोगों पर पुलिस की अतिरिक्त सख्ती के आरोप लगते रहे, जिसमें कई मौतें भी हुई। फर्गुसन शहर में पिछले साल अगस्त में 24 वर्षीय माइकल ब्राउन नामक निहत्य व्यक्ति को गोली मारी दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। फ्रांस के एक व्यक्ति सोलमाने सायला का आरोप है कि उन पर पेरिस मेट्रो रेल में जातिवाद अभद्र टिप्पणियां की गईं और साथ ही उन्हें ट्रेन से भी बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने सबके लिए यूरोपियन फुटबॉल क्लब चेल्सी के 4 प्रशंसकों को दोषी ठहराया है। इसमें एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और एक पूर्व पुलिस अधिकारी शामिल है। हालांकि चारों के दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत वो इतने समय के लिए कोई भी फुटबॉल मैच स्टेडियम में जाकर नहीं देख सकेंगे। वहीं चेल्सी ने उन पर आजीवन तक प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। गतिरोध की वजह से राज्यसभा में पहले 2 दिन और लोकसभा में बुधवार का दिन कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल व्यापम मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ललित मोदी की कथित मदद के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह विपक्ष की मांग को ठुकराया है उससे संसद में आज भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। एक रिपोर्ट के साथ संदीप राय।
संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है। बुधवार को हंगामे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि गुरुवार को भी वो अपने रुख में नरमी नहीं लाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
यह पूरा श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पर निर्भर है। मोदी सरकार अगर संसद चलाना चाहती है तो कांग्रेस उससे दो कदम आगे बढ़कर इसके लिए जुम्मेवार विपक्ष के तौर पर ये काम करेगी। परंतु अगर प्रधानमंत्री जी अपनी हठ धर्मिता के चलते पूरे विपक्ष की आवाज और इस देश की आवाज को दबाना चाहें तो माफ कीजिए, प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है। उनको अपनी पार्टी के उन सब लोगों की जो घोटालों के अंदर जिनका पर्दाफाश हुआ है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी संसदीय कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस की मांग मानने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी का पूरा समर्थन हासिल है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा,
अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी बिना होमवर्क के हाहाकार मचा रही है। वो खुद कंफ्यूज है और वो कंफ्यूजन का जो उनका दायरा है वो इतना हर दिन बढ़ता जा रहा है कि उससे वो तय नहीं कर पा रहे कि वो चाहते क्या है। पिछले जब हमारी सरकार नहीं थी और कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हम कहते थे चर्चा करो, वो कहते थे हम चर्चा नहीं करेंगे, इसकी वजह से सदन का काम बाधित होता था। अब हम कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष और कांग्रेस कह रही है हम चर्चा नहीं करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोपों का जवाब पूरी आक्रामकता से देना चाहती है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो चर्चा को तैयार तो है लेकिन कांग्रेस की मांग मानकर संसद चलाने को तैयार नहीं है।
संसद में मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह से कई महत्वपूर्ण विधेयकों का भविष्य अधर में है। सरकार और विपक्ष दोनों को इसका अंदाजा है लेकिन दोनों में से कोई भी अपने रुख में नरमी लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर से बात की और पूछा, क्या संसद में जारी गतिरोध खत्म होने के कोई आसार नजर आते हैं?
सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से पलटवार किया है कि भाई मेरी कमीज पर अगर आप छींटे दिखा रहे हैं तो उनकी पूरी गंदी कमीज निकालने की जो एक कवायद शुरू हुई है, सुषमा स्वराज का ट्विटर बम, संतोष बारगोडिया का नाम लेना और बड़े मंत्री का पूर्व नाम लेना, तो ये सारा उनकी रणनीति दिखा रहा है। फिर उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और एक दूसरे मुख्यमंत्री का नाम लेना, तो कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप में तो कार्रवाई तो निश्चित रूप से अभी धुलेगी।
क्या ये मानसून सत्र का जो मौसम राजनीतिक बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है वो सुधर पाएगा?
नरेंद्र मोदी की भी इमेज ऐसी है कि वो कभी झुकते नहीं है, कभी टूटते नहीं है, जो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के दौर से जो ये उनकी छवि रही है, मुझे लगता नहीं कि उस पर किसी तरीके का कोई ये समझौता अभी करने जा रहे हैं। फिर लगातार जो ये बात साबित करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की, ये लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं, आए बहस करें, तर्क रखें। हालांकि पिछले सत्र में ये लोग यही करते रहे लेकिन उस समय विपक्ष थोड़ा मजबूत था, अभी विपक्ष कम से कम लोकसभा में तो कमजोर है। कांग्रेस तो देखिए अस्तित्व के लिए संघर्ष कर ही रही है, उसको विपक्ष को अपने पीछे साधना एक सबसे बड़ी उसकी चुनौती है और राहुल गांधी की राजनीति के लिए ज्यादा आवश्यक है कि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट दिखाई पड़े। लेकिन आप अगर देखेंगे तो विपक्ष सरकार पर सवाल जरूर उठा रहा है लेकिन वो कांग्रेस का पिछलग्गू होकर नहीं दिखना चाहता है। अलग अलग नेता अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं पर वो एक साथ ना आने से उस तरीके का मोमेंटम नहीं बन पा रहा। ये अलग बात है कि सरकार दो दिन से तो अभी ये गतिरोध टालने में नाकामयाब रही है लेकिन जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने कहा साफ साफ कि हम इस्तीफों के पक्ष में कतई नहीं, हालांकि मायावती कहना था कि इस्तीफे तत्काल होने चाहिए, अब शरद यादव या सीताराम येचुरी इन सबकी भाषा भी यही थी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो एक बड़ा राज्यसभा में जिनके पास नंबर है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा टूटते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये एक इनके पक्ष में जा रहा है। और दूसरे दल भी बहुत आक्रामक नहीं, अगर आप देखेंगे तृणमूल कांग्रेस वगैरह रश्मि विरोधी कर रहे हैं, उस तरीके की आक्रामकता नहीं है उनमें।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर। उधर मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के शोर के बीच कल विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ होने के केवल 3 दिन बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे सहयोगी संदीप राय ने वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से बात की और पूछा, मानसून सत्र विधानसभा का सत्र जल्दी खत्म होने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान?
देखिए मध्य प्रदेश में जो अभी ये मानसून सेशन हुआ था इसमें भाजपा सरकार जो थी वो डिफेंसिव थी, बैकफुट पे थी और वो उन्हें कोई व्यापम के जो मामले थे, जो मुद्दे थे, उस पर चर्चा करने में कोई रुचि नहीं थी। विपक्ष कांग्रेस ने अपने तेज तेवर किए, हंगामा किया, शोर मचाया, तो उन्होंने, भाजपा ने उसका फायदा उठा लिया। देखिए, जो उन्हें बिल वगैरह पास करने थे या जो जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव बिजनेस, वो उन्होंने जो शोर शराबे में वॉइस वोट से पास करा लिया, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि भाजपा का वहां पूर्ण बहुमत है, तो शोर शराबे के बीच में उन्होंने अपना जो खानापूरी का काम था वो कर लिया, डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। तो उस तरह से कांग्रेस एक तरीके से अपने उत्साह में अपना नुकसान कर गई, क्योंकि अगर डिबेट होती तो शिवराज सिंह चौहान को या जितने व्यापम से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें वो घेर सकते थे और जनता के बीच में वो बात जाती, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। अब तो सिर्फ सुर्खियां ये बनी कि सेशन हुआ और उसके बाद वो हंगामे के बीच में वो खत्म हो गया।
क्या शिवराज पर विपक्षी दलों के दबाव का कुछ असर दिख रहा है क्या?
शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष के बजाय उनका सरकार से, जो दिल्ली की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उससे वो दबाव में है। उनको दिल्ली तलब किया गया था, तरह तरह की बातें हो रही हैं, और व्यापम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मिडिल क्लास में हर जो नौजवान होता है, लड़के लड़कियां या उनके माता पिता, सबकी एक एस्पिरेशन होती है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, और उसकी बड़ी मेहनत करते हैं। उसमें इतनी तरह से जो है धांधलेबाजी हो कि मेरिट को बिल्कुल किनारे, तो एक मिडिल क्लास में उसको एक बहुत ही बुरा हो गया। तो उनको लग रहा है कि सरकार जो है, जो इतने सालों से यहाँ मध्य प्रदेश में थी, वो ऐसा उसको कुछ चेक नहीं कर पाई। उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि लोग मिले हुए हैं, फिर जो हत्याएं और षड्यंत्र की बातें उठी हैं, उससे शिवराज सिंह चौहान की जो पूरी एक मामा की इमेज थी, एक गरीब परवर की इमेज थी, एक किसान फ्रेंडली उनका जो एक पोस्चर था, उससे उसको बड़ा धक्का लगा है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई। रुख करते हैं बिहार का। बिहार की राजनीति में कौन सांप है और कौन चंदन, इस सवाल के इर्द गिर्द एक नई बहस छिड़ गई है। इसकी वजह बना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो ट्वीट जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में किया। नीतीश कुमार ने रहीम के दोहे का इस्तेमाल किया जिसमें कहा गया है कि सांपों के लिपटे रहने से चंदन जहरीला नहीं हो जाता है। जब विरोधियों ने आरोप लगाया कि नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधा है, तो उन्हें कहना पड़ा कि इशारा लालू नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
नीतीश कुमार से ट्विटर पर एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको लालू जी के साथ जीत मिली और उनके पास अहम संख्या बल हुआ, तो आप अच्छी विकास परक सरकार देने में कैसे कामयाब होंगे। इसके जवाब में नीतीश ने ट्वीट किया कि बिहार का विकास मेरा इकलौता एजेंडा है। साथ में रहीम का दोहा भी लिखा, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। नीतीश के इस ट्वीट को लेकर विरोधियों ने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विरोधियों का कहना था कि नीतीश ने खुद को चंदन और लालू को सांप बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा,
रोपे बबूल तो आम कहां से होए? ये रोप रहे हैं बबूल, लालू जी के संगत में जा रहे हैं, जो जंगल राज के जनक थे, और दोहा पढ़ रहे हैं लपटे रहत भुजंग। और ये चंदन वो चंदन नहीं है जो इन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीतीश जी पर पूरा लालू जी का प्रभाव पड़ चुका है।
वहीं लालू प्रसाद यादव ने पहले तो सवाल पूछने वाले की मंशा पर सवाल उठाए, उसके बाद कहा कि दोहे के इस्तेमाल का असल आशय नीतीश कुमार ही बता सकते हैं।
जो पूछा होगा, जो भी क्यूट में सब जालसाजी जो करता है, इस तरह का सवाल पूछा होगा, वो दुष्ट प्रकृति का आदमी होगा।
विवाद ने तूल पकड़ा तो नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। नीतीश ने कहा उन्होंने रहीम के दोहे का इस्तेमाल लालू नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किया।
जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि भाजपा का जो जहरीला विचार है उसके लिपटे रहने के बावजूद मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, सांप्रदायिक एजेंडा वो नहीं चला सके बिहार में।
नीतीश की सफाई के बाद गठबंधन के सहयोगी भले ही शांत हो गए हों, लेकिन कोई दावे से ये नहीं कह सकता कि बिहार की राजनीतिक शतरंज पर शह और मात के खेल में जुटे खिलाड़ी ऐसी चालें और नहीं चलेंगे। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रिश्तों को लेकर सवाल उठे हों। वात्सल राय ने ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से बात की और पूछा, क्या वाकई नीतीश कुमार का इशारा लालू की तरफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ था?
उन्होंने जो कुछ कहा और वो जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज लोगों तक पहुँच गया, और उसके बाद राजनीतिक मजबूरी थी जिसमें उन्होंने उसका ये बोला कि ये हमने बीजेपी के लिए कहा था। और यहाँ पर मैं रहीम का ही एक और दोहा कहना चाहूंगा जिसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटक तक। तो मामला ये है।
तो क्या गठबंधन चलेगा या ये केवल दिखावे के लिए ही गठबंधन है? आपको क्या लग रहा है स्थितियां किस तरफ इशारा कर रही हैं?
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि दूर तक ये गठबंधन चल पाएगा।
तो इसमें नुकसान किसका है? और फिलहाल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का रुख है, खासतौर पर वो गठबंधन का चेहरा भी नहीं है, और आज भी जो उनकी प्रतिक्रिया थी उसमें कोई तल्खी नहीं थी।
हाँ, लेकिन सुबह उन्होंने कहा कि आप इस सवाल का जवाब नीतीश से पूछिए कि उन्होंने किसके लिए कहा है, और बाद में उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लिए कहा होगा जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि हमने लालू जी के लिए नहीं भाजपा के लिए बात कही। लालू जी की दिक्कत ये है कि वो कन्विक्टेड हैं और वो ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना किसी संवैधानिक पद पर दावा कर सकते हैं। वो काफी कमजोर, जो उनकी आवाज में भी लगता है, उनके पूरे अपीयरेंस में लगता है कि वो उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको वो आप ये कहिए कि लालू जी अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं शायद इसी वजह। नीतीश की दिक्कत ये है कि उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लालू जी।
नीतीश और लालू के बीच में जो खाई नजर आ जाती है अक्सर, इसका फायदा बीजेपी को कितना मिल पाएगा?
नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर नीतीश और लालू अगर अलग होते हैं इलेक्शन से पहले, या कहीं वो बढ़ जाती है और कहीं अलगाव की स्थिति बन जाती है, तो उसका फायदा नीतीश को मिलेगा, बीजेपी को नहीं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी। ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाएंगे उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई पर एक विशेष रिपोर्ट, लेकिन पहले आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है बताने के लिए अमल चौधरी कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
संदीप, अगर आज के अखबारों पर नज़र डालें तो अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे की खबरें ही छाई हुई हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है घोटाले के बदले घोटाला, भाजपा का लड़ने का नया तरीका। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है भाजपा ने कांग्रेस से लड़ने के लिए लिया स्टिंग का सहारा। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने की मुख्य खबर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रही तनातनी पर है। खबर का शीर्षक है DCW प्रमुख की तैनाती को लेकर जंग और राज्य सरकार के बीच विवाद। इस खबर में स्वाति मालीवाल को राज्य सरकार द्वारा दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख चुने जाने को नजीब जंग ने न केवल गलत ठहराया है और राज्य सरकार से 28 जुलाई तक जवाब भी मांगा है। वहीं अन्य खबरों में निजता के मामले पर केंद्र सरकार के रुख पर खबर है, जिसे लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है निजता किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। वहीं द हिंदू लिखता है केंद्र सरकार ने कहा निजता अधिकार नहीं, आधार कार्ड वैध। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा निजता का अधिकार कहाँ है आप तय करें। वहीं हिंदी अखबारों में भी लगभग इसी तरह से है, जनसत्ता का शीर्षक और नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान हिंदी ने भी इन्हीं खबरों को संदीप प्रमुखता से लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई की जन्म शताब्दी के मौके पर उनकी बेटी सबरीना लतीफ, उर्दू आलोचक शमीम हनफी और पटकथा लेखिका शमा जैदी ने इस्मत चुगताई से जुड़ी यादें बीबीसी के साथ साझा की हैं। एक रिपोर्ट के साथ श्वेता सिंह।
मरियम, तुमने वो बताया वो कल मुहा पठान भूत को घूरता रहता है, और हाँ इधर की दुनिया उधर हो जाए कल भूत चर्च नहीं जाएगी।
ये आवाज है उर्दू की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई साहिबा की, जिन्हें सिर्फ उर्दू साहित्य में ही नहीं हिंदी के पाठकों के बीच भी उतना ही अदब से याद किया जाता है। इस्मत आपा ने भारत की रूढ़ीवादी परंपराओं और सोच पर अपनी लेखनी के जरिए आवाज उठाई है। उनकी एक कहानी है लिहाफ, जिसे उर्दू साहित्य की पहली ऐसी रचना माना जाता है जो समलैंगिकता पर लिखी गई थी। कहानी लिहाफ का कुछ लोगों ने विरोध किया और इसके लिए इस्मत आपा पर लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा भी चला था।
विरोध इसलिए करते थे कि लोगों को सच बात अच्छी नहीं लगती है, और वो सच लिखती, वो किसी औरत की बुराई नहीं करती थी, कभी किसी औरत की बुराई नहीं करती थी, हर औरत की रिस्पेक्ट देती, हर मत को रिस्पेक्ट देती। मुझे तो कोई वो डिफरेंस नहीं लगता कि लोग विरोध करते थे, वो करते रहे करने दो।
ये हैं इस्मत चुगताई की छोटी बेटी सबरीना लतीफ। इस्मत चुगताई का जन्म एक मुस्लिम परिवार में 21 जुलाई 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। ये 10 भाई बहन थे। इस्मत चुगताई की शादी फिल्मकार शाहिद लतीफ से हुई थी। मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मी इस्मत चुगताई जी ने अपनी बेटियों की परवरिश किस तरह से की, इस पर सबरीना लतीफ कहती हैं।
उनने हमें दोनों बेटियों को बड़ा किया एज इंडियंस। She never said you're Muslim, you're Hindu, you're Christian. He says no, we are Indians first. और जो तो आपका जो मजहब है वो आपका पर्सनल चॉइस है। और हम जहाँ रहते थे इंडस कोर्ट में गुरुद्वारा में दोनों बेटियों को नीचे भेजती थी कि जाओ जल्दी जल्दी जाओ अच्छे ड्रेस चेंज करो जाके माथा टेक हुआ। ऐसे हमें बड़ा किया। यू नो इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी। अगर वो किसी मैरिज पे जाती थी और शादी होती थी तो पंडित से कहती थी नहीं नहीं ठहरो ठहरो मुझे समझाओ कि ये फेरों में पहला फेरे का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है, दूसरे का क्या है। नो शी वॉन्टेड टू नो वॉट वॉज द वाउ, क्या उसके मीनिंग क्या थे। नामकरण में जाती थी किसी हिंदू फैमिली के यहाँ, उधर भी पूछती थी इसका मतलब क्या है, कैसे आप रखते हैं नामकरण। शी वॉज वेरी एंशियस टू नो अबाउट एवरीथिंग। एक लाइफ है, जितना भी मैं सीख सकूँ सबके बारे में, दुनिया के बारे में, मुझे बहुत खुशी होगी।
इस्मत चुगताई को जानने वाले कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में एक तरह का खरापन था। उनका जहन बहुत खुला हुआ था। इस्मत चुगताई के व्यक्तित्व को याद करते हुए उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक शमीम हनफी कहते हैं,
श्वेता उसमें इस्मत चुगताई से मेरी मुलाकात बहुत ही एक लंबे स्पैन ऑफ टाइम पर फैली हुई मुलाकात है। वो हमारे जमाने के सबसे अच्छे कहना चाहिए लिखने वालों में या लिखने वालियों में थी, उर्दू शॉर्ट स्टोरी में खासतौर पर। अगरचे उन्होंने नॉवल भी लिखे हैं, कोई आधे दर्जन के करीब नॉवल लिखे हैं, लेकिन एक उर्दू शॉर्ट स्टोरी में जो कहना चाहिए जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है उर्दू शॉर्ट स्टोरी का, उसमें वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पोजिशन, बहुत खास हैसियत उनकी थी। यानी प्रेमचंद के बाद उर्दू कहानी का दूसरा जो बड़ा मोड़ है वो पीरियड जो है वो इस्मत चुगताई का पीरियड भी।
कहानियां लिखने के साथ साथ इस्मत आपा ने कई फिल्में भी लिखी और फिल्म जुनून में एक रोल भी अदा किया। उनकी कहानी पर आधारित फिल्म गर्म हवा को कई पुरस्कार भी मिले।
तकसीम हुआ मुल्क तो दिल हो गए टुकड़े, हर सीने में तूफान वहां भी था यहां भी, हर घर में चिता जलती थी लहराते थे शोले, हर शहर में शमशान वहां भी था यहां भी। गीता की कोई सुनता न कुरान की सुनता, हैरान सा ईमान वहां भी था यहां भी।
इस्मत चुगताई की कहानी को स्क्रीन प्ले के रूप में तैयार किया शमा जैदी और कैफी आजमी ने। कैसे इस्मत आपा तक कहानी लिखने के बाद पहुंची बता रही हैं शमा जैदी।
एक दफे हम लेडी साहब के साथ एक चादर मैली सी का नाटक पे काम कर रहे थे हम। तो इस तरह हम रोज बैठते जब उनके पास फुर्सत होती थी, तो एक दिन उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान नहीं गए ऐसे मुसलमान परिवार पे तुम स्क्रिप्ट करो, तुम फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए। कह नहीं नहीं स्क्रिप्ट तुम इस्मत से लिखवाओ, तुम उनसे सिर्फ कहानी ले लो और तुम लिख दो या किसी और से लिखवा लो। इसलिए उन्होंने कहानी तैयार हमारे साथ बैठ, फिर वो जब मैं लेने गई तो कहने लगे है वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, वो सफेदी हो रही थी और वो जो किताब थी वो गुम हो गई। मैंने कहा कि फिर अब क्या करें, है ना फिर से बनाते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ और थोड़ा बदल अदल बदल के जितना उन्हें याद रहा फिर लिख के मुझे दिया। फिर कुछ महीने बाद कहने लगे हाँ अब मैं सफाई कर रही थी तो वो मिल गई किताब, तो वो भी दे दी मुझे। तो दोनों कहानियां मिला के
औरतों की पढ़ाई, आजादी और पर्दे की बात जहां पर आई, इस्मत आपा उनके समर्थन में आगे आईं। अपनी आत्मकथा कागजी है पहन में इस्मत आपा ने जिक्र किया है कि जब पहली बार उन्हें बुर्का पहनना पड़ा तो उन्हें घुटन महसूस हुई थी। बुर्का पहनने के सवाल पर सबरीना कहती हैं,
बुर्का तो कभी नहीं कहा कि तुम बुर्का पहनो, बट यू नो ड्रेस डिसेंटली। अभी हम लोगों ने कभी एडवांटेज नहीं लिया। हमने तो 14 साल की उम्र से साड़ी पहनना शुरू किया, 14-15। एक किस्सा बोल रही थी वो बुर्का नहीं पहनना चाह रही थी, तो उनने क्या किया कि होल्ड ऑल होते थे ना बेडिंग्स जब ट्रेन में जाते थे उसमें छुपा दिया उनने कि भाई मुझे मालूम नहीं मेरा बुर्का कहाँ गया। वो कहती थी डिपेंड करता है, हर एक को अपनी चॉइस करनी चाहिए, अपनी वो जो उनको पसंद है वो करना चाहिए, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
उनके जन्म शताब्दी के दिन शमीम हनफी साहब ने उन्हें कुछ यूं याद किया।
جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کی قدر و قیمت تو آج بھی ہوگی. اور یہ سال تو 1915 میں وہ پیدا ہوئی تھی, یہ 2015 ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ 100 برس ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے, محبت سے یاد کیا جا رہا ہے. تو چاہے لکھنے کے انداز بدلتے جاتے ہیں, ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں لٹریچر میں, رائٹنگ میں ہوتے ہیں, کہانی لکھنے کے اتنے طریقے ہیں جتنے طریقے لوگ دنیا میں بستے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کہ عصمت چغتائی کی جو جگہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم رہے گی, اور ان کو ہمیشہ اسی حیثیت سے یاد کیا جائے گا کہ اردو میں ایک بہت بڑی لکھنے والی پیدا ہوتی.
شویتا سنگھ, بی بی سی دلی.
اور آئیے اب امل چودھری سے جانتے ہیں دیش دنیا میں آج کیا کچھ ہو رہا ہے.
کانگریس اپادھیکش راہل گاندھی آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کا دورہ آج سے شروع کریں گے. آندھرا پردیش کا وبھاجن ہونے کے بعد علاقے میں راہل گاندھی کا یہ پہلا دورہ ہوگا. راجیہ میں کانگریس کا جنادھار پہلے کی تلنا میں کمزور ہوا ہے. سوچنا ایون پرسارن منترالے آج ایف ایم ریڈیو کے تیسرے فیس کی موک نیلامی کرنے والی ہے. منترالے کی اس چرن میں 69 شہروں میں 135 ریڈیو اسٹیشن شروع کرنے کی یوجنا ہے. منترالے کی ویب سائٹ پر موجود نوٹس کے انوسار تیسرے چرن کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے نیلامی ہوگی جو 27 جولائی سے شروع ہوگی. کھیلوں کی دنیا میں سری لنکا میں 3 ٹیسٹ میچ کھیلنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کا آج چین ہوگا. ٹیم کا پہلا میچ 12 اگست سے شروع ہوگا. انتراشٹریہ خبروں میں امریکی ودیش منتری جان کیری اور امریکی ارجا منتری ارنیسٹ مونز آج سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے ایران کے ساتھ ہوئے پرمانو سمجھوتے کے پرمان پیش کریں گے.
اور اب کھیل کی خبریں.
نمسکار, کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں راکھی شرما. کھیل کی خبروں میں سب سے پہلے بات سری لنکا دورے پر جا رہی بھارتیہ ٹیم کے چین کی. 6 اگست سے شروع ہو رہے سری لنکا دورے کے لیے بھارتیہ ٹیم کا چین آج دلی میں کیا جائے گا. بھارتیہ ٹیم اس دورے پر 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی. یہ دورہ 6 سے 8 اگست تک چلنے والے 3 دن کے ابھیاس میچ سے شروع ہوگا. پہلا ٹیسٹ گول میں 12 سے 16 اگست, دوسرا میچ اوول میں 20 سے 24 اگست, اور تیسرا ٹیسٹ کولمبو میں 20 اگست سے 1 ستمبر تک کھیلا جائے گا. پچھلے 5 سالوں میں بھارتی ٹیم کا سری لنکا میں یہ پہلا ٹیسٹ سیریز دورہ ہوگا. اور اب بات فٹبال کی. بھارت میں ہونے جا رہے سیف چیمپئن شپ کی تیاریوں کے مد نظر 31 اگست کو نیپال کی ٹیم بھارت کے خلاف دوستانہ میچ کھیلے گی. یہ مقابلہ پونے میں کھیلے جانے کی سمبھاونا ہے. نئے کوچ دھبرا بہادر کے سی کی کوچنگ میں نیپال ٹیم کا یہ پہلا میچ ہوگا. اور وہیں پچھلے مہینے وشو یونیورسٹی کھیلوں میں انوشاسن ہینتا کے چلتے بھارتی یونیورسٹی یونین نے 3 پروش تیراندازوں پر 3 سال کا پرتیبندھ لگا دیا ہے. ساتھ ہی انہیں ان پر خرچ کیے گئے پیسے لوٹانے کو بھی کہا گیا ہے. کمپاؤنڈ ٹیم کی یہ تکڑی 3 سے 14 جولائی تک کوریا کے گوانگجو میں ہوئے یونیورسٹی کھیلوں میں برونز میڈل پلے آف مقابلے میں اٹلی کے خلاف نہیں اتری تھی. کھیل سماچاروں میں فی الحال اتنا ہی.
کھیل سماچاروں کے ساتھ ہی وقت ہو چلا ہے کارکرم کے سماپن کا, لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سنتے ہیں وشو سماچار.
بی بی سی سماچار. سنسد کے موجودہ مانسون ستر میں آگے بھی گتیرودھ قائم رہنے کے آثار بنے ہوئے ہیں. کانگریس للت مودی پرکرن کو لے کر ودیش منتری سشما سوراج اور راجستھان کی مکھیہ منتری وسندھرا راجے کے استعفیٰ دینے تک کسی بھی چرچا سے انکار کیا ہے. گریس کی سنسد میں آرتھک سدھار پر چرچا شروع ہو چکی ہے. وہیں دوسری طرف یوروپین سینٹرل بینک نے گریس کو دینے والی آرتھک مدد 900 ملین یورو یعنی قریب 62 ارب روپے تک بڑھا دی ہے. ایک سپتاہ میں گریس کو ملنے والی یہ دوسری آرتھک مدد ہے. امریکہ کے ٹیکساس شہر میں ایک کالی مہیلا سینڈرا بلینڈ کی موت کی جانچ کر رہی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سینڈرا کی گرفتاری کا جو ویڈیو جاری کیا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے. پولیس کی کار کی ڈیش بورڈ پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ کے انوسار سینڈرا نے لین بدلتے وقت انڈیکیٹر نہیں دیا اور ایک گورے پولیس والے نے اسے روکا, جس کے بعد ان کے بیچ کہا سنی کے بعد دھکا مکی ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا, جس کے 3 دن بعد اس کی موت ہو گئی. فرانس کے ایک ویکتری سولمانے سائلا کا آروپ ہے کہ ان پر پیرس میٹرو ریل میں جاتی وادی ابھدر ٹپنیاں کی گئیں اور ساتھ ہی انہیں ٹرین سے بھی پھینک دیا گیا. انہوں نے اس سب کے لیے یوروپین فٹ بال کلب چیلسی کے 4 پرشنسکوں کو دوشی ٹھہرایا ہے. اس میں ایک مانوادھیکار کاریکرتا اور ایک پورو پولیس ادھیکاری شامل ہیں. حالانکہ چاروں کے دوشی پائے جانے کے بعد کورٹ نے ان پر 5 سال کا پرتیبندھ لگا دیا ہے. इसके तहत वो इतने समय के लिए कोई भी फुटबॉल मैच स्टेडियम में नहीं देख सकेंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत के पहले अंक में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पूरी टीम को अनुमति दीजिए।